तो हम लोग तृतीय अध्याय में थे और हम लोगों ने पिछले सत्र में 30वां श्लोक देखा था जो कि तीसरे अध्याय का प्राण श्लोक है। कर्मयोग की परिभाषा उसके अंदर है। तो भगवान कहते हैं तत्ववित्तु महाबावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक ऐसा व्यक्ति है जो तत्ववित है। तत्ववित मतलब उसको तत्व के बारे में मालूम है, उसको आत्मविद भी हम कह सकते हैं, उसको पूरा ज्ञान है। क्या ज्ञान है उसको? गुण कर्म विभागयो, उसको गुण के बारे में पता है और गुण से जो चीजें बनी हैं वो क्या है और उनके कर्म क्या है, इनके बारे में उसको पता है। गुण किसको कहते हैं? कितने गुण है, क्या क्या है? तो तत्वित को पता है सत्व रजस तमस, तो आप तत्वित हो गए, आपको पता है तीन गुण होते हैं। इन गुण से क्या बना? इन गुण से क्या बना? इन गुण से हमारा शरीर बना और सारा ब्रह्मांड भी बना, सारे ऑब्जेक्ट्स भी बने। तो गुण से दोनों चीजें बनी, हमारा शरीर भी बना और ऑब्जेक्ट्स भी बने, वस्तुएं सारी बनी। तो शरीर का क्या काम है? तो शरीर का जो कर्म है वो भी उसको पता है। वो क्या करता है? वो विषयों के साथ में व्यापार करता है, ट्रांजैक्शन करता है। हमारा शरीर जो है विषयों के साथ में व्यापार करता रहता है सारा दिन। तो शरीर किससे बना? गुण से। और वस्तु किससे बनी? सेंस ऑब्जेक्ट किससे बने? गुण से। तो व्यापार किस में हो रहा है? गुण का गुण से व्यापार हो रहा है। देखो समझ आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया तो आप तत्वित हो गए, हैं? तत्वित हो गए आप। दो चीज आपको जाननी है। पहला चीज आपको ये जानना है कि एक गुण होते हैं, तो गुण तीन है वो हमको पता है। और गुण से क्या बना वो भी हमको पता है, शरीर भी बना और सारी दुनिया भी उस गुण से बने हैं। तो व्यापार किस में चल रहा है? शरीर में और उन वस्तुओं में, संसार के साथ व्यापार चल रहा है। तो उसने कहा गुना गुणे सुवर्तन थे। जो तत्वित है उसको ये मालूम है कि एक गुण दूसरे गुण से व्यापार कर रहे हैं बस। इति मत्वा न सज्जते, इसलिए वो उसके साथ में जुड़ता नहीं है। किससे नहीं जुड़ता है? गुण से और गुण की बनी हुई चीजों से। गुण की बनी हुई चीजें क्या है? शरीर है और सारा ब्रह्मांड है। मतलब ये हुआ कि तत्वविद जो है प्रकृति से जुड़ता नहीं है, प्रकृति से जुड़ता नहीं है। क्यों? वो जानता है कि हम प्रकृति से भिन्न हैं, प्रकृति से हम अलग हैं, हम प्रकृति नहीं है, ये तत्वविद जानता है। एक दूसरा व्यक्ति है, प्रकृते गुणे सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, एक जो है अतत्वविद है, उसको ज्ञान नहीं है। वो क्या करता है, प्रकृति गुणे सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के साथ में जुड़ा हुआ है, वो सोचता है कि मैं प्रकृति हूं। तान अकृष्णविद मंदान कृष्णविन न विचालेत। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है वो बोला मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि, उसको ये नहीं पता है कि मैं वो प्रकृति नहीं हूं, मैं उससे दूसरा हूं। हम लोग किस कैटेगरी में है, तत्वित में है कि अतत्वित में है? तत्वित को हम आत्मवित भी कहते हैं, आत्मवित, और जो तत्वित नहीं है वो आत्मवित नहीं है। तो भगवान ने एक शब्द यहां दिया कि कृष्णविद, कृष्णविद मतलब सब जानता है वो, जो तत्वविद है उसका एक दूसरा नाम यहां दिया आत्मविद या कृष्णविद। तो भगवान कहते हैं ऐसे आत्मविद को कहते हैं कि तुम जो व्यक्ति वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है उसको तुम विचलित नहीं कर देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ये नहीं कह देना तुम गलत काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भला ऐसा कभी नहीं करना। अब प्रश्न उठता है कि अगर जो अकृष्णविद है, जो अज्ञानी है, उसको अगर ज्ञानी बनना है तो क्या करना है? प्रश्न समझ में आया? हम लोग क्या है, ज्ञानी है? बोले जो अज्ञानी है उसको अगर ज्ञानी बनना है तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कर्म का सहारा लो। आपको अगर आप अज्ञानी हो, आपको अगर ज्ञानी बनना है, आपको तत्ववित बनना है, आपको आत्मवित बनना है या कृष्णवित बनना है, बोले आप कर सकते हो, हो सकता है, क्या करें हम? बोले कर्म का सहारा लो, कर्म करो। क्या कर्म करें, कैसे करें? तब भगवान उसको बताते हैं कि आपको ऐसे कर्म करना है, मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगच्छर। भगवान कहते हैं आप कर्म करो, कैसे करो? मैं, मेरे लिए, सर्वाणी कर्माणी, ये तो सरल हिंदी है, कर्माणी कर्म, कितने कर्म? सर्वाणी, सर्वाणी का मतलब 100% कर्म। संन्यस्य किसके लिए करो? मेरे लिए करो। संन्यास कैसे करो? अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा मतलब तुम्हारा मन जो है मेरे पास रहे बराबर। आपका मन चेतस जो है वो किसके पास रहे? मेरे पास रहे, अध्यात्म चेतसा। अच्छा, ये क्या हुआ, कोई नया कर्म तो नहीं बोला भगवान ने? ऐसा नहीं कहा पूजा करो। भगवान केवल इतना कहते हैं कि आप अपने कर्मों से मेरी पूजा करो। कैसे पूजा करें हम? ये तो पत्र पुष्प नहीं है जैसे हम लोग करते हैं पूजा, भगवान की अर्चना करते हैं, एक एक फूल देते जाते हैं, एक बार नाम पढ़ा ओम शिवाय नमः, एक फूल दे दिया, ओम रुद्राय नमः, फूल दे दिया, वो तो सहज है, मगर कर्म को कैसे हम करें, कर्म को हम कैसे करें? तो शंकराचार्य जी यहां बताते हैं अध्यात्म चेष्टा का मतलब है अगर आप अपने कर्म को समर्पण करना चाहते हो तो बेस्ट वे है कि अपने को समर्पण करो, पहले अपने को समर्पण कर दो, कर्म अपने आप समर्पण हो जाएगा। अपने को समर्पण करना का मतलब क्या हुआ, अपने को समर्पण करने का मतलब हुआ कि मैं उस मालिक का, उस भगवान का मैं नौकर हूं। आप अपने आप को नौकर समझो। फिर नौकर क्या करता है? नौकर मालिक की खुशी के लिए सब काम करता है, चाहे आपको वो काम पसंद हो या ना हो, उसको मालिक की खुशी के लिए काम करना होता है। भगवान कहते हैं तुम मेरे को मालिक समझो, मैं तो सारी दुनिया का मालिक हूं, मेरे को मालिक समझो और समझ के मेरे लिए करो। अच्छा, कैसे करें? बोले निराशी। निराशी का मतलब क्या? आशा नहीं करो। किस चीज की आशा नहीं करो? आशा जो है बराबर जो है भविष्य के साथ में रिलेटेड है। हम जब भी कुछ आशा करते हैं वो बराबर किसी भविष्य वस्तु के लिए होता है। तो भविष्य में क्या आने वाला है? कर्म करेंगे तो कर्मफल आएगा। तो भगवान कहते हैं कर्मफल की चिंता नहीं करो। देखो कई लोग यहां पर जो है ना गलत इसका मतलब निकाल लेते हैं। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्मफल नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हर कर्म का कर्मफल आएगा, निश्चित आएगा। कर्मफल आएगा। तो भगवान कहते हैं जिस टाइम आप काम कर रहे हो, जिस समय काम कर रहे हो, उस समय फल की चिंता मत करो। फल की चिंता प्लानिंग स्टेज में पहले कर लो। जो भी आपको करना है, जो भी आपको फल चाहिए, प्लानिंग अच्छी तरह से कर लो। आप करने के बाद में जब उसका एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम फल की चिंता मत करो। क्यों नहीं करें फल की चिंता उस टाइम में? भगवान कहते हैं कि अगर काम करने के समय आप फल की चिंता करोगे तो क्या होगा? सम पार्ट ऑफ योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% मन आप काम में नहीं लगा रहे हो। अगर आप 100% मन नहीं लगाओगे तो फल क्या 100% आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको फल 100% चाहिए तो क्या करना होगा? उस टाइम हम फल की चिंता नहीं करेंगे, मैं प्लानिंग स्टेज में पूरी फल की चिंता करेंगे, अच्छी तरह से हम चिंता करेंगे। एग्जीक्यूशन के टाइम में कोई चिंता नहीं। निर्ममा। एक लड़के को जो प्रश्न पत्र मिला, जॉइंट की परीक्षा दे रहा था, उसने देखा है तो सारे प्रश्न हमको आते हैं, हैं? अब सारे प्रश्न आते हैं तो मेरे को इतने मार्क्स मिल जाएंगे, इतने मार्क्स मिल जाएंगे तो इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, पास कर लूंगा, 3M में नौकरी मिल जाएगी, बस गया खत्म। आशा आशा के अंदर समय निकल गया उसका। निर्ममा। निर्ममा का मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू पास्ट। हमने हमको जो भी कर्म फल मिला, जो भी संचय हुआ, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा हम करते हैं ना। तो इसके अंदर भी आपको उस टाइम में एग्जीक्यूशन के टाइम में, काम करने के टाइम में आपको निर्मम होना होगा। निर्मम मतलब ममत्व बुद्धि नहीं आनी चाहिए। और युद्धस्व विगत ज्वरा। युद्धस्व विगत ज्वरा का मतलब क्या हुआ कि इन प्रेजेंट में कई बार ऐसा होता है हमको एक्साइटमेंट हो जाती है, जो हमने मंगा रहे ये तो आ गया, पूरा हमको मिल जाएगा, आप एक्साइटेड हो गए। तो बोले उस टाइम में आप एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, युद्धस्व विगत जो रहा। फल की आशा आप नहीं करो, फल आएगा, जरूर आएगा। आप 100% अगर मन लगाओगे तो 100% फल मिलेगा, मगर एग्जीक्यूशन के टाइम में आप मत सोचो, न पास्ट के बारे में सोचो, न भूतकाल के बारे में, न भविष्यकाल के बारे में, और वर्तमान में पूरे 100% लगा के, मन लगा के आप काम करो। अच्छा, कैसे शुरू करें? अब प्रश्न उठता है हम शुरू कैसे करें? एक साथ पहले दिन में तो हम फिफ्थ गियर में नहीं चल सकते। आपकी गाड़ी भी तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, जो भी है चलती है, पर एक साथ तो फर्स्ट सिक्स्थ गियर में नहीं रह सकते ना। भगवान कहते धीरे 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 शुरू करो, फिर आस्ते 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 उसको बढ़ाओ, बढ़ाते 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 आप लाइन में आ जाओगे। तो भगवान को हमको याद करना है, तो भगवान को अगर याद करना है, देखो इसके ये कर्मयोग ना बहुत सी चीजों का उपाय है, बहुत सी चीजें इसमें आपको लाभ देगी। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि निषिद्ध कर्म नहीं करो, काम या कर्म नहीं करो। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे ना तो बहुत लाभ है। अभी हम कैसे काम करते हैं, कर्म कैसे करते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? अपनी। आप सब एक राय हो तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं जो आप कर्म करते हो ना वही करो, मगर केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करो। अच्छा, मेरी प्रसन्नता के लिए और मेरे लिए में फर्क क्या है? ये जब तक आप विज्ञान ठीक से नहीं सोचोगे ना आपको पता नहीं लगेगा। अगर हम अपनी खुशी के लिए कर्म करना चाहें तो कई बार जो हम झूठ बोल लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वही अगर प्रश्न अपने आप से पूछो कि जो मैं ये करने जा रहा हूं इसमें भगवान खुशी होंगे कि नहीं, क्या उत्तर मिलेगा आपको? मैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए एक गलत काम करने को तैयार हूं। अब आप अपने आप अपने दिल से पूछिए क्या भगवान इससे खुश होंगे, आपको क्या उत्तर मिलेगा? नहीं होंगे। मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि झूठ बोल के शायद मेरे को पैसे मिल जाएं, मैं खुश हो जाऊंगा, मगर भगवान नहीं खुश होगा। अगर भगवान नहीं खुश हो रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। देखो गलत काम था वो, क्योंकि भगवान खुश नहीं हो रहे हैं इस वास्ते मैं नहीं करूंगा। अब आपके निषिद्ध कर्म अपने आप बंद हो गए। देखो आपने पकड़ लिया ये विज्ञान, अगर हम भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं तो निषिद्ध कर्म बंद हो गए। आया समझ में आपको, पकड़ में आया कि नहीं आया? सारे के सारे निषिद्ध कर्म खत्म हो गए, आप एक भी गलत काम नहीं कर पाओगे। जैसे ही गलत काम करोगे अपने आप से पूछो मैं गलत काम करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू चीट माई फ्रेंड, भगवान खुश होंगे? इसलिए हम नहीं करेंगे। हम खुश होंगे? हां। निषिद्ध कर्म खत्म हो गया, समझ लिया आपने ठीक से? अब देखो काम्य कर्म भी नहीं होंगे आपसे, डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन भी जो है इसको भी ये रोक देगा। कैसे रोक देगा? देखो प्रकृति में सारी प्रकृति जो है दूसरों के लिए काम करती है, सारी प्रकृति जो है दूसरों के लिए काम करती है। सूर्य, चंद्र, पहाड़, नदी, नाले, पेड़, पशु, पक्षी सब दूसरों के लिए काम करते हैं। केवल एक मनुष्य को 84 लाख योनि के अंदर भगवान ने केवल एक मनुष्य को जो है कर्म की स्वतंत्रता दी है, और किसी को कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, इवन देयर सेक्स लाइफ इज ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड, फिक्स्ड है, सीजन है उनके, मेटिंग सीजन्स हैं, मगर एक मनुष्य को पूरी फ्रीडम देके रखी है। क्यों दी? भगवान कहते हैं कि हमारे 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान जो है केवल एक मनुष्य ही है, इतनी बुद्धि हमने और किसी को नहीं दी है। अच्छा, प्रकृति के अंदर सब काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ने जो काम दिया वो कर रहे हैं, वो सब समय समय पर सब अपना काम कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, मगर हम जगत के लिए नहीं करते। अच्छा, अगर हम जगत के लिए करें, सारी दुनिया, सारे क्रीचर, सारे सब कोई कर रहे हैं, अगर मैं ना करूं तो भगवान खुश होंगे? 84 लाख योनि के अंदर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, सब के सब जो है भगवान के लिए, भगवान ने जो काम उनको दिया है वो कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, आम का पेड़ आम देगा। भगवान ने कहा है कि तुमको आम देना है मगर तुम नहीं खाओगे, दूसरे खाएंगे, मगर इस सीजन में आपको आम देना है, देता जा रहा हूं। सूर्य आपको ताप और प्रकाश दे रहा है, पैसे लेता है आपसे? नहीं देता है, दूसरों के लिए कर रहा है। अगर इस नियम को मैं भी पालन करूं तो भगवान खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो, खुश होंगे। और भगवान के लिए काम नहीं करके मैं अपने लिए करूंगा तो उससे भगवान खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो, दुखी होंगे। जोर से बोलो, दुखी होंगे। अब देखो, एक कर्मयोग से जो है ना, दो चीजें आपकी ठीक हो गई, ना तो आपसे काम्य कर्म होगा ना निषिद्ध कर्म होगा। ये इसके पीछे विज्ञान है, साइंस है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है इसके? हाँ, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। राम जी जब वनवास गए, कौन राजा बने? भरत बने। अच्छा, भरत क्या राजगद्दी पर बैठे? नहीं बैठे। राजगद्दी पर क्या थी? राम की पादुका थी। और वो क्या थे? हालांकि राजा वो थे, एक्टिंग किंग, मगर वो अपने आप को बोलते थे मैं तो भगवान राम का सेवक हूं, राजा तो वो है, पादुका उनकी वहां पर रखी हुई है, करते थे। तो भरत भगवान राम के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं। आया कर्मयोग आ गया? उसके बाद में हमारे गुरु जी, जब गुरुदेव की समाधि हुई तो पत्रकार या किसी सदस्य ने, कुछ डिबोटी ने पूछा होगा, कैसा लगता है आपको, अब तो आप उनके जूतों में आ गए, यू आर इन हिज शूज। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, आई एम एट हिज फीट। देखो, ये विनय है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। गुरुदेव के लिए मैं काम कर रहा हूं। और डिसिप्लिन से देखो, जैसे ही उन्होंने किया, कितनी तरक्की की चिन्मय मिशन ने। आप लोग तो सब सदस्य हो, आपको पता है क्या था और क्या हो गया। अभी लक्ष्मण को देखो, वनवास किसका हुआ था? राम का। लक्ष्मण का वनवास था? लक्ष्मण क्यों गए? मुझे भगवान राम की सेवा करनी है, इसलिए गए। भगवान राम की सेवा करनी है इसलिए साथ साथ चले। जो कुछ भी करना है भगवान, वो काम क्रोध जो भी था भगवान राम के लिए करते थे। तो ये सब नजीर है हम लोग के पास में, उदाहरण है, लोग ऐसा करते आए हैं। उसके बाद में आपको और भी उदाहरण देते हैं। हनुमान जी, सारी रामायण के अंदर आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर हनुमान जी अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई भी अपना काम है, कर्म, ईगो सेंट्रिक डिजायर नहीं है एक भी, भगवान के लिए काम है। तो ये विज्ञान को आप पकड़ लो, क्या भगवान कराना हमसे चाहते हैं, हमको क्यों करना चाहिए, इसे क्या फायदा होगा, भगवान बताएंगे आगे क्या फायदा होने वाला है आपको। आप करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, दोनों साफ साफ भगवान कहने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, मेरे लिए सब आप कर्म करो। एक जगह लिखा है, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। जैसे बिना विवेक के विद्या नहीं होती है, असली विद्या क्या है, विवेक करो। उसी तरह जब तक आप सत्कर्म को भगवान के लिए नहीं कर्म करोगे, तब तक उसका फल नहीं आएगा। और एक जगह कहा कि अगर आप बंजर भूमि के अंदर बीज डाल दो तो काम नहीं होता है, बंजर भूमि, बंजर भूमि किसको कहते हैं? जहां कुछ नहीं उगता है, अनफर्टाइल लैंड के अंदर आप जो अगर सीड डाल दो, बहुत अच्छा सीड डाल दो, कुछ भी नहीं होगा वहां पर। उसी तरह अज्ञानी या अभक्त को तो ज्ञान देना ही नहीं है। बाद में जाके 18वें अध्याय में भगवान कहने वाले हैं किसको ये ज्ञान दो किसको नहीं दो। तो इससे क्या होगा कर्म योग करने से? बोले तीन चीजें होंगी आपको। एक तो आप कंपीटेंट हो जाओगे। कंपीटेंट किस चीज के लिए? आत्मज्ञान के लिए आप कंपीटेंट हो जाओगे, आप योग्य हो जाओगे, आप अधिकारी बन जाओगे। एक दूसरा आपका कर्ता भाव शिथिल हो जाएगा। कर्ता भाव मतलब हमारे में डूअरशिप बहुत स्ट्रांग है। किसने किया? मैंने किया है। किसका घर है? मेरा घर है। ठाकुर रामकृष्ण बोलते थे कि जब जो है दो भाई लड़ते हैं ना संपत्ति, पिता की संपत्ति, पिता का स्वर्गवास हो गया, अब दो भाई हैं, दो भाई लड़ते हैं, तो वो एक चेन ले आते हैं। आगे के जमाने में उसको हाफ अप करने के लिए चेन होता था, एक चेन लगा के इधर वाला तुम्हारा है इधर वाला मेरा है। तो भगवान ऊपर से हंसते हैं कि तुम्हारे आने के पहले कितने ही लोग इस जमीन को मेरा मेरा कह के चले गए, और तुम्हारे जाने के बाद भी कई लोग उसी जमीन को कहेंगे मेरा है मेरा है मेरा है। नहीं होता है कि नहीं? अभी आशीष बाबू जी का मकान है, हैं? आशीष बाबू के लेने के पहले जमीन किसकी थी? किसी और की। उसके पहले और किसी की थी? अरे असली जमीन का मालिक कौन है? भगवान है। भगवान बोलते हैं, हंसते हैं वहां से बैठ के, ये अपना 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 कर रहा है, मेरी संपत्ति को अपना अपना कर रहा है। तो कर्ता भाव शिथिल हो जाएगा। और भगवान का अगर नाम लेंगे ना, तो भगवान क्या है? भगवान आनंद रूप है। आपको आनंद मिलेगा भगवान के लिए। आप कर्म करना शुरू करो तो आपको आनंद मिलेगा। देखो पहले पहले एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक धनी व्यक्ति जब देखता है कि चिन्मय मिशन के अंदर में अच्छा काम हो रहा है, ये लोग अच्छा काम करते हैं, तो पहले थोड़ा सा धन देगा। वो थोड़ा सा धन देगा, धन दे के फिर कुछ दिन के बाद आएगा देखने के लिए मेरे धन से आपने क्या किया, कुछ वहां प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं, कि कोई मेरा धन लेके चला गया ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जब वो देखेगा कि नहीं थोड़ा काम हुआ है यहां पर, तब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा, फिर आएगा, फिर थोड़ी सी सेवा करेगा। सेवा करते 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 जो है वो आदमी जिसमें मिशन का पिलर बन जाता है, पिलर। ऐसे हैं व्यक्ति हमारे मिशन के अंदर हैं, किस तरह से वो लोग आस्ते आस्ते जुड़े, वो लोग पिलर बन गए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को सेंटर में रखो, सारे कर्म मेरे लिए करो। अगर तुम कर्म अपने लिए करोगे विथ ईगो और सेल्फिश करोगे, तब बंधन होगा, वो कर्मयोग नहीं हुआ। हम कई बार कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की अगर परवरिश करें बिना एक्सपेक्टेशन के कि मेरा लड़का या मेरी लड़की बुढ़ापे का सहारा होगी, तो दैट इज ग्रेटेस्ट कर्म योग, ग्रेटेस्ट कर्म योग। मगर आपके मन में अगर ये विचार आया है क्योंकि मैं इसको पालन पोषण इस वास्ते कर रही हूं या कर रहा हूं कि बुढ़ापे में ये कमा के मेरे को देखेगा, मेरे को खिलाएगा, तब वो कर्मयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? साकाम हो गया। आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भगवान खुश होंगे? ऐसे सोचो, तब आपको पता लगेगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि कर्मयोग से मन कैसे शुद्ध होता है, तो भगवान कहते हैं अगर तुमको समझ आए नहीं आए करो, तो हमने कह दिया करो। हम लोग के गुरु जी का भी हम लोग को यही इंस्ट्रक्शन था, गुरु जो कह दे करो, प्रश्न नहीं करना, एकदम गुस्से हो जाते थे। और हम लोग के जो आचार्य थे स्वामी अद्वैतानंद, वो बोलते प्रश्न करो। क्यों प्रश्न करो? अरे प्रश्न करोगे तभी तो आपके सारे डाउट खत्म होंगे। अर्जुन के जितने डाउट थे उसने प्रश्न किए, उसके बाद उसका उत्तर मिला तो संशय उसका दूर हुआ ना। तो गुरु जी हमारे आचार्य को जो है डांट देते थे, तुमने इन लोगों की आदत खराब कर दी है प्रश्न करवा करवा के। अब ये प्रश्न करते हैं, हर बात में प्रश्न कर देते,
मेरे को भी प्रश्न करने लग
गए, अब मेरे को भी प्रश्न करने लग गए ये लोग। तो वो केवल एक ही कहते थे करो। अच्छा, भगवान भी यही कहने जा रहे हैं, 31वां श्लोक।
ये मे मतमिदं नित्यं,
ये मे मतमिदं नित्यं,
अनुतिष्ठन्ति मानवाः,
अनुतिष्ठन्ति मानवाः,
श्रद्धावन्तो न सूयन्तः,
श्रद्धावन्तो न सूयन्तः,
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः,
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः,
ये मे मतमिदं नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो नु सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
अब जो है भगवान दो श्लोक में कर्म फल की फल श्रुति बता रहे हैं, अगर आप कर्म फल करोगे तो क्या मिलेगा। देखो साथ साथ भगवान जो है फल भी बताते जाते हैं, नहीं तो आपके मन में संशय आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मेरे इस मत को मान कर चलता है, जो मैंने कहा, क्या कहा, कर्मयोग करो। क्या है कर्मयोग? किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो? हाँ, इतना याद रखना बस। कोई नया कर्म कहा नहीं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हों, चाहे प्रोफेशनल हों, जो भी कर्म कर रहे हैं, ड्राइवर, इंजीनियर, क्लर्क, जो भी हो, हम जो भी कर्म आपका है वो करो। किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। अच्छा, कैसे अनुष्ठान करें इसका? दो वर्ड भगवान ने कहे, श्रद्धावंत अनुसूयंत, दो चीज। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा मतलब फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कह दिया ये ब्रह्म वाक्य है, इसमें मेरी भलाई है, मेरे को ऐसा करना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? आप नहीं चलोगे। श्रद्धा मतलब विश्वास। हमारे भारत में तो ना किसी को किसी गली का पता लगाना हो ना, तो क्या करते हैं, रिक्शा वालों को पूछते हैं, पान वाले से पूछते हैं, ये गली कहाँ है, ये मकान कहाँ है। तो हमको उसके ऊपर श्रद्धा है, उसके ऊपर विश्वास है, वो जो कहता है उसके हिसाब से दाहिने बाएं घूमते रहते हैं। अब गुरु शास्त्र भगवान बोलते हैं कि ऐसा करो, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो भगवान पहला वर्ड कहते हैं श्रद्धावंत, कि मेरी टीचिंग के अंदर श्रद्धा रखो, मैंने जो भी आपको कहा है उसके ऊपर विश्वास रखो। अनुसूयंत, अनुसूयंत मतलब उसके अंदर दोष नहीं निकालो। बहुत लोगों का जो है ना एक ऐसा आदत होती है ना, हर चीज में कभी दोष देखना। किसी भी काम में बहुत किसी ने बहुत अच्छा बनाया, काम बहुत अच्छा किया, अब वो दोष निकालेंगे उसमें से, ऐसे लोग हैं। तो खाली इसी में नहीं, वो बोलते हैं कि दोष जो है वो भगवान के काम में भी दोष निकालते हैं। ये भगवान की थ्योरी में भी दोष निकालने वाले बहुत हैं। कर्मयोग कैसे होगा? होता ही नहीं है, कैसे? बहुत दोष निकालते हैं, अनुसूयंत है। अच्छा, क्यों अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक और अनुसूयत रूप से करें, क्यों करें? बिना दोष निकाले और बिना उसके अंदर कोई डाउट रखे, विश्वास करके हम क्यों करें? तो भगवान कहते हैं मुच्यंते तेपि कर्म भी, तो आप जो है मुक्त हो जाओगे। किससे? कर्म भी। क्या है कर्म भी? बोले वो आपने धर्म अधर्म जो किया है ना पीछे, हम सब ने धर्म अधर्म बहुत किया है। कितना किया है कोई बताएगा? जब आपकी निम्न योनि के अंदर जन्म होता है तब आपने पाप ज्यादा किए हैं और पुण्य कम किया है। जब आपकी देवलोक के अंदर जन्म होता है तब आपने पुण्य ज्यादा किए हैं और पाप। जब आपका मनुष्य में जन्म होता है, मनुष्य लोक में मनुष्य रूप में होता है, तब आपके पाप और पुण्य इक्वल रहते हैं। याद है आपको, हमने कई बार कहा ये। तो हम सबके पाप और पुण्य, क्यों पाप हुए क्यों पुण्य हुए? क्योंकि हमने धर्म और अधर्म किया है। क्यों अधर्म किया? क्योंकि हमने सारे कर्म अपनी खुशी के लिए किए हैं। जब हम अपनी खुशी के लिए कर्म करते हैं तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं, होता है कि नहीं? जब अपनी खुशी के लिए कर्म करेंगे तो हम शॉर्टकट कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, चीट कर लेंगे, सब कुछ करेंगे हम। तो धर्म और अधर्म, आप ये मत सोचना कि मिस्टर एक्स जो है बहुत धार्मिक आदमी है, उन्होंने खाली पुण्य पुण्य किया है, ऐसा नहीं है। अगर उनका जन्म हुआ है तो उसका मतलब उनको दुख और सुख दोनों ही मिलेगा। और जब हम पूछते हैं कैसे हो आप क्या बोलते हो? कभी बोलते हो दुखी हैं? हाउ आर यू? गुड। कोई नहीं कहता दुखी है। अच्छा, कोई ये कह सकता कि सारा जीवन में दुखी नहीं हुआ? इम्पॉसिबल, कोई नहीं कह सकता। तो भगवान कहते हैं तुमने जो भी धर्म अधर्म उससे तुम जो है मुक्त हो जाओगे। अब हमारा एक डाउट आ जाता है, भगवान हमने जो अधर्म किया पाप किया वो ले लो, आप लो सब ले लो, अभी ले लो, अभी देने को तैयार है, मगर जो पुण्य किया है उसको क्यों लेते हो? एक प्रश्न आता है ना कई बार, जब महात्मा लोग हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं, ब्राह्मण जब खाने के लिए आते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा आप अपने पाप पुण्य हमको दे दो। हम घबरा जाते हैं, पाप पाप ले लो, पुण्य छोड़ जाओ। उनका मतलब क्या है? देखो भाई, आपके पास पुण्य रह जाएगा फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा ना, पुण्य ही पुण्य रह गए फिर आपको स्वर्ग में जन्म लेना होगा, और छीने पुण्य मर्त्यलोक के भी संति फिर आ जाना होगा आपको। तब बताओ, अगर आपको अगर कोई कहे संत की पाप पुण्य दोनों दे दो, अब दे दोगे? अब दोगे? तो क्योंकि हमारा और जन्म नहीं होगा, इसलिए वो कहते हैं दे दो मेरे को सब पाप पुण्य। तो भगवान भी यही कहते हैं, भगवान कहते हैं मुच्यंते तेपि कर्म भी, जितने भी कर्म आपने किए हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं धर्म अधर्म आख्यई, आपने धर्म अधर्म जो किया है, जो भी किया है, सबसे मुक्त हो जाओगे। अब बताओ करना चाहिए कर्मयोग? अगर हम धर्म अधर्म किए हुए कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो जाएगा तो हम ज्ञान के अधिकारी होंगे। मैंने कई बार कहा है कि ज्ञान के लिए कितने स्टेप हैं? दो हैं। पहला क्या है? मन की शुद्धि। कैसे होगी माँ? कर्मयोग किसकी खुशी के लिए है? हम किसकी खुशी के लिए कर्म करते हैं? हम अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? जोर से बोलो अम्मा। क्यों संकोच करते हो? अब कर्म योग का विज्ञान आपको समझ में आया पूरा ठीक से? जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप चलोगे नहीं। इसलिए कर्म योग में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर इसका विज्ञान हमको साइंस समझ में आ जाएगा तब हम चलना शुरू करेंगे, नहीं तो शुरू नहीं करेंगे। अनुसूयंत, अनुसूयंत मतलब अब उसके अंदर कोई दोष नहीं देखो कर्मयोग के अंदर में, आप फर्दर एनालिसिस की कोई दरकार नहीं है, दोष नहीं देखो। अगर दोष देखेंगे तो क्या होगा? नहीं चलेंगे। अब शास्त्र बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं, अध्यापक बोल रहा है, आप विश्वास नहीं करते हो। जब विश्वास नहीं करते हो तो चलते नहीं हो, मानते नहीं हो, सीधा सीधा हिसाब एकदम। तो भगवान कहते हैं कि आप जो से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, यहां पर एक वर्ड उन्होंने यूज किया, मानवा। देखो ये इंस्ट्रक्शन जो है केवल मनुष्य के लिए है, बानरा व पशवा नहीं कहा। दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर एनिमल्स, बंदरों के लिए नहीं है, मानवा के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए है। अच्छा, कौन से मनुष्यों के लिए है भाई? क्योंकि 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ जो है मनुष्य है। जब भगवान ने ये ज्ञान दिया 5000 साल पहले, तब मुस्लिम धर्म भी नहीं था, बौद्ध धर्म भी नहीं था, और बहुत से धर्म नहीं थे। ये सब तो 2500-3000 साल के अंदर सब आए हुए हैं। तब क्या था? मानवा, मनुष्य। तो ये मनुष्य कौन से हैं? सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए है ये। कोई नेशनलिटी, कास्ट, क्रीड, मेल फीमेल कुछ नहीं देखना है, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। और हमारी गीता में या हमारे उपनिषद में कहीं हिंदू वर्ड नहीं आया है, कहीं नहीं आया है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, कि केवल भारतीय के लिए है, ऐसा नहीं है। मानवा सबके लिए है। अच्छा, अब इसके बाद में भगवान, देखो हमारे कर्मकांड के अंदर कुछ बहुत कुछ हो सकता है। कर्मकांड के अंदर ये हो सकता है कि राजसूय यज्ञ क्षत्रिय करेगा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं करेगा, रौद्रेष्टि यज्ञ निषाद करेगा। अब निषाद कौन है? अब निषाद के लिए आपको लक्ष्मण गीता सुनने के लिए इस रविवार नहीं, इसके अगले रविवार को आपको अशोक जी के घर में आना होगा। रामायण के अंदर आएगा निषाद, तो निषाद ये करेगा। अच्छा, कई यज्ञ के अंदर होता है कि ये केवल पत्नी करेगी, कई पर होता है कि पति पत्नी दोनों रहेंगे। राम जी ने यज्ञ किया, सीता जी का एक सोने की मूर्ति बना के उन्होंने यज्ञ किया, पत्नी सहित करना है। तो वहां पर कुछ भेद हो सकता है, मगर उपनिषद और गीता के अंदर कहीं पर कोई ऐसा भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म योग जो है ना कर्मकांड नहीं है। कर्म योग कर्मकांड रिचुअल नहीं है। कर्मयोग हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, कौन कौन कर सकता है? बोले बानर गिलहरी सब कर सकते हैं कर्मयोग। गिलहरी ने भी किया ना कर्मयोग, थोड़ा थोड़ा सा बालू ले जाके फेंका। कर्मयोग किसके लिए कर रही थी वो? भगवान के लिए। तो एक बड़ा सा बंदर जो था ना, उसको कुचलना चाहता था गिलहरी को। तुम क्या कर रही है रस्ते जटो, हम लोग बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं। तो दौड़ी गई राम जी के पास में, तो राम जी ने उसको हाथ में लिया, लेके उसको पुचकारा। वो 3 लाइन है उसके ऊपर में, और उस बंदर को समझाया कि तुम जो बड़े बड़े शिला लेके जा रहे हो उसके बीच में जो दरार है, वो दरार को भरने के लिए भी उसके अंदर बालू सीमेंट चाहिए, तो ये अपना बालू लाके उसमें डाल रही है, इसका भी काम है ना, उसका भी काम है। देखो श्रद्धा बनता पूरी शिक्षा लेने के बाद में, पूरे विश्वास के साथ में करो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो, आपकी श्रद्धा है, अब वो आपका जो है दवाई आपको दिया, यहाँ तो आप कहते कि नहीं कहते हैं, वहाँ इंडिया में तो कविराज में बोलेंगे तो इतना दिन नहीं खाना, रोटी खाओगे तो जो है केवल मूंग की दाल लेना, फुलका जो है सूखा होना चाहिए, ये तीन दिन के बाद में शुरू करना, पूड़ी कचौड़ी सब फ्रिज में रखना, ऐसा तो हमको विश्वास है, हम करते हैं वैसा। एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने एक आदमी का जो है ऑपरेशन किया गले का, तो उसको उसने कहा कि एक महीने तक तुम कंटिन्यूअस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। वो बोलता गया, हम लोग तो लोगों को कहते हैं ना चुप करो। अब उसको विश्वास है क्योंकि उसका गला ठीक हो जाएगा, अब उसने उसको ऐसी सलाह दी होगी कि बोलने से ये ज्यादा जल्दी ठीक होगा, आप बोलते रहना बोलते रहना। तो वो करता रहा। अनुसूयंत, अनुसूयंति का मतलब क्या है? गुणों में दोष देखना, गुण के अंदर दोष को देखना। अगर आप ऐसा करोगे ना, हर चीज के अंदर दोष देखोगे तो आपकी स्पिरिचुअल साधना के अंदर अड़चन आएगी। एक तो आपका मन दूषित होगा क्योंकि आप खाली दोष 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 देखते जा रहे हो, दूसरा ये होगा कि आप दूसरों को भी दूषित करोगे। आप दोष देख के अपने पास नहीं रखते हो, दोष का आप प्रचार करते हो, पता है उसके बारे में आपको पता है क्या हुआ था, दोष देखते हो फिर उसको बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। अखंडानंद महाराज कहते हैं दोष देखना मतलब आपकी दो आंखें हैं एक आंख बना लेना, समझ में आया? अखंडानंद महाराज कहते हैं आपकी दो आंखें हैं, अरे दो आंखों से अच्छा बुरा दोनों देखो तब भी समझ में आता है, आप खाली दोष ही देखते हो तो क्या हुआ, आप एक आंख वाले बन गए, अब ठीक से विचार नहीं कर रहे हो। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकार कोई भी कंपनी जो है बिना दोष के नहीं है, सब जगह थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, सब में है। हम लोगों ने 18वें अध्याय में ये भी पढ़ा कि हर कर्म के अंदर थोड़ा दोष है, सब में दोष है, थोड़ा शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो हमको तो वो नहीं देखना है ना, हमको तो यहां से निकलना है। निकलने के लिए क्या करना है? मन शुद्ध करना है, मन शुद्ध करके हमको निकल जाना है। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसे लोग गुरु रूपी वासुदेव में भी दोष देखते हैं, शंकराचार्य जी लिखते हैं। जिसकी दोष दृष्टि हो गई वो क्या करता है, गुरु रूप वासुदेव जो बोल रहे हैं उसके अंदर भी दोष निकालते हैं लोग। पता नहीं 5000 साल पहले भगवान ने कहा था, अभी लगेगा कि नहीं, अभी एप्लीकेबल है कि नहीं, कहते हैं ना बहुत लोग कहते हैं सर। उनसे पूछो क्या मनुष्य का मॉडल बदली हुआ, मनुष्य के शरीर में आत्मा और अनात्मा दो ही तो चीज है, क्या वो बदली हुई? क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? जरूर एप्लीकेबल होगा। तो लाभ क्या है? बोले लाभ तो आपको बता दिया, सर्व कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। देखो कर्म का बंधन का क्या है, कर्म का अकाउंट आप मर जाते हो आपका बैंक अकाउंट यहां बंद हो जाता है, मगर कर्म का अकाउंट चलता रहता है, कर्म का अकाउंट चलता रहेगा। कर्म का अकाउंट अगर बंद करना है क्या उपाय है? अभी बोला भगवान ने मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, विश्वास करो इस पर, अगर भगवान कहते हैं कि आप कर्म से मुक्त हो जाओगे तो इस पर आप विश्वास करो, मुच्यन्ते मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाएगा मतलब क्या हुआ, अब आपका अकाउंट बंद हो गया, अब आपको जो है और जन्म नहीं लेना है, अभी आपके ऊपर है, अगर आप जन्म लेना चाहते हो तो डोंट फॉलो। आपको अगर जन्म लेना है, आपको लगता है कि ये जिंदगी अच्छी है, मजा है मजा ही मजा है, अगर मजा लग रहा है तो ठीक है चलते। और अगर संसार के दुख देख लिए हैं, अगर समझ लिया है संसार को, तो भगवान कहते हैं जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करो। तो यहां पर केवल तीन चीजें, आप घर लेके जाइए, क्या? कर्मयोग करो। क्यों करो? किसकी खुशी के लिए करो? क्या लाभ होगा? मन शुद्ध होगा, डेफिनेटली मन शुद्ध होगा। फिर क्या होगा उससे? हम ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। ज्ञान नहीं होगा, केवल कर्मयोग से ज्ञान नहीं होगा, कर्मयोग करने से मन शुद्ध होगा, तो वो मन जो है ज्ञान के लिए अधिकारी बनेगा। उसके बाद आपको ज्ञान के लिए जाना होगा। तो उन्होंने कहा एक तो श्रद्धावंत, इसके ऊपर श्रद्धा रखो। दूसरा उन्होंने कहा अनसूयंत है, इसमें से दोष नहीं निकालो, दोष नहीं निकालो। और तीसरा उन्होंने फल बता दिया कि आपको कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कर्म से क्या होगा, क्यों कर्म करो, ध्यान करो। आप जो लोग कर्म करते हैं ना, वो आप आते पूछते हैं आप क्या करते हो सारा दिन, ध्यान करते हो कभी? नहीं। तो खाली कर्म करने से क्या, ध्यान करो। जो ध्यान करता है उसको बोलते हैं सेवा करते हो क्या? नहीं, सेवा करो। तो लोग ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुमको बताता हूं जो लोग नहीं करते हैं। देखो दोष देखने वाले बहुत आते हैं। गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया, बोला आपको उस व्यक्ति ने दान दिया? बोला हाँ दिया है। पता है वो अपने नाम के लिए किया है, वो अपने पोजीशन बनाना चाहता है, दोष देख रहा है उसमें। देखो दूसरा व्यक्ति दोष देख रहा है। अब भगवान कहता अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये भी तो बताना होगा। करोगे तो क्या लाभ है? कर्म से बंधन से मुक्ति। नहीं करेंगे तो क्या होगा, भगवान बताते हैं।
ये त्वे तदभ्यसूयन्तः,
ये त्वे तदभ्यसूयन्तः,
नानुतिष्ठन्ति मे मतम्,
नानुतिष्ठन्ति मे मतम्,
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्,
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्,
विद्धि नष्टान चेतसः,
विद्धि नष्टान चेतसः,
एते तदभ्यसूयन्तः, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढांस्तान्, विद्धि नष्टान चेतसः।
ये तू, तू मीन्स जो पिछले श्लोक में जिस लोग की चर्चा की है उसके विपरीत, उसके विपरीत पहला वाले श्लोक में 31वें श्लोक में कहा कि जो श्रद्धा के साथ में बिना किसी दोष निकाले जो कर्म करता है, कर्म योग करता है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो तू जो है वर्ड इन श्लोक नंबर 32 कहता है उसका उल्टा, उसका उल्टा मतलब जो कर्म योग नहीं कर रहा है, दोष निकाल रहा है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसके बारे में भगवान कहते हैं अभ्यसूयंत। अभ्यसूयंत मतलब केवल दोष निकालता है। समाज में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप कुछ भी कहने जाओ उसमें दोष निकाल लेंगे। आप अच्छा खाना खिलाओ, आपने जान जी जान लगा के खाना बनाया, अच्छा हुआ थोड़ा सा नून कमती है इसमें या नून ज्यादा हो गया, खाली दोष निकाला। न अनुतिष्ठन्ति, न अनुतिष्ठन्ति दे डोंट फॉलो, क्योंकि दोष निकाल दिया ना, तो वो कर्म योग नहीं करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सर्व ज्ञान मतलब उनका ज्ञान, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो है उन्होंने जो समझा है वो गलत समझा है। विमूढ़ सर्व ज्ञान, जो हमने ज्ञान दिया उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग मूढ़, खाली मूढ़ ही नहीं, विमूढ़, विशेष रूपे न मूढ़ है, हम लोग की चलती भाषा बोलेंगे गधा है, विमूढ़ है। वो आदमी कैसा है? बोले कंफ्यूज्ड है वो। तो ये क्यों होता है? तो महात्मा लोग कहते हैं अगर आप ईगो के साथ में अगर श्रवण करोगे ना, ईगो के साथ में विद अहंकार, तब एक कंफ्यूजन आएगा। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना शास्त्र के प्रति, कि आचार्य के प्रति, कि गुरु के प्रति, तब तक जो है गड़बड़ चलता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं आएगी, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट बीच बीच में इंटरप्ट करेगा अरे नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है, ये ठीक नहीं है। अभिसुयंत, अभिसुयंत मतलब अभी में चारों तरफ से वो दोष निकालता है, चारों तरफ से दोष निकालेगा, अभिसुयंत कंटिन्यूअसली दोष निकालता रहता है उसमें। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति का मन तैयार नहीं है, इज नॉट रेडी। नष्टान, उसका नाश हो जाता है। कैसे नाश हो जाता है? एक हम लोग का लेटर ऑफ फॉल है, आपको याद होगा, कहां पर है वो? चैप्टर टू में है। क्या है वो लेटर ऑफ फॉल? ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, उसके बाद में संगात संजायते काम है, कामात क्रोधत अभिजायते, क्रोधात द्वति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विनसाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति, प्रणश्यति का मतलब जो है नाश हो गया उसका। नाश का मतलब वहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुरुषार्थ अयोग्य भवति इति अर्थ, वो पुरुषार्थ करने के लायक नहीं रहा। पुरुषार्थ करने के लायक मतलब नहीं रहा मतलब क्या? कितने कितने पुरुषार्थ होते हैं? हाँ, क्या क्या? चार पुरुषार्थ होते हैं ना, तो जिसका नाश हो गया वो बोलते वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा, अयोग्य हो गया। बहुत सिंपल है ये तो। आपको क्रोध आ गया, जैसे ही क्रोध हो जाएगा आपको जो है मोह स्मृति गई, आप किससे बात कर रहे हो भूल जाते हो, बुद्धि का नाश हो गया, डिसीजन आपके गलत होंगे, आपका नाश हो गया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए हमको क्या करना है? बोले भगवान कृष्ण के मत का अनुसरण करो, अनुसरण करो। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो एक देश के अंदर एक राजा होता है, वो राजा जो नियम बना देता है तो सारे की सारी प्रजा मानती है, मानती है कि नहीं? मगर उसका नियम दूसरे राज्य में तो नहीं चलता है। अमेरिका का नियम इंडिया नहीं चलेगा, इंडिया का नियम चाइना में नहीं चलेगा, चाइना का जापान में नहीं चलता है, मगर भगवान का नियम। तो कोई देश की सीमा के अंदर सीमित तो नहीं है, वो तो सब जगह एप्लीकेबल है। देखो महात्मा लोग कैसे सोचते हैं, ये तो भगवान का नियम है ना, कर्मयोग किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, तो ये कहां एप्लीकेबल होगा? केवल भारत में? सब जगह एप्लीकेबल होगा, हर देश में वो एप्लीकेबल होगा। लोग जो है भगवान के बताए हुए मार्ग को उसमें दोष निकालकर, कि भगवान कहते हैं फल की इच्छा नहीं करो, ऐसे कोई कर्म होता है बिना फल की इच्छा किए? कैसे कहते हैं, किस संदर्भ में कहते हैं, आपने ठीक से समझा नहीं। आप कर्म जैसे भी करो फल तो आएगा ही आएगा। भगवान कब फल की इच्छा नहीं करो कहते हैं? वो कहते हैं भाई कर्म करने के टाइम मत सोचो, उस टाइम में पहले सोच लो। लोग ये दोष निकालते हैं, तो ये दोष कैसे आया? मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने ठीक से समझा नहीं, इस वास्ते आप दोष निकाल रहे हो। अब मानो अर्जुन के मन के अंदर ये एक भाव आया है, उसने कहा नहीं है, एक भाव आया कि अगर भगवान आपका ये विचार अगर इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, तो लोग करते क्यों नहीं है? है ना मजे की बात। और भगवान ही मन ही मन सोचते हैं कि अगर मेरा ये थ्योरी इतनी अच्छी है फिर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, है ना, मजे की बात। तो भगवान बताएंगे लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं। दो श्लोक में बताएंगे भगवान, उन दो श्लोक को हम लोग अगले छत्र में देखेंगे। तो आप लोग को कर्मयोग क्लियर हुआ, साइंस ठीक है, करना चाहिए। कर्म कांड के अंदर भी देखो, आप जो भी करते हो रिचुअल, रिचुअल के अंदर भी भगवान के प्रीति के लिए करते हो। जो भी आप कर्म कांड कर रहे हो उसके अंदर मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उसके अंदर घी जो डाल रहे हो वो किसके लिए डाल रहे हो? एक मंत्र पिया, पढ़ा और उसको डाला, और उसके बाद आप करते हो न इदम ममा, ये मेरे लिए नहीं है भगवान, ये किसके लिए है? जिस भगवान की पूजा के लिए हम करते हैं वो कर्म कांड है। यहां पर ठीक उसी चीज को हवन जो है अभी हम नहीं कर सकते, यहां हवन करना मुश्किल है। रिचुअल जो आगे बताए गए थे उस रिचुअल को आज के जमाने में करना बहुत मुश्किल है। आप लोग अगर रुद्रम पढ़ो उसका अगर मीनिंग जानो तो उसमें एक एक जगह ऐसा लिखा है कि भगवान मुझे 3 साल की गाय दो, 3.5 साल की दो, 4 साल की गाय दो, ये मांग रहा है। क्यों दो? क्योंकि हवन के अंदर में कई जगह लिखा हुआ है काली गाय 3 साल वाली का दूध का घी चाहिए, 3.5 साल वाली का चाहिए, 4 साल वाली का चाहिए। तब वो गाय अब कौन सी गाय चाहिए? भारतीय गाय होगी कि जर्सी चैक चाहिए होगी, हम्प वाली होगी कि बिना हम्प वाली होगी? करना मुश्किल है अभी। सामग्री लाना मुश्किल है। आपने अमेरिका ने तो सारे बीज ही बदल दिए, कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ओरिजिनल कहाँ है? नॉट ओरिजिनल अब है ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ, कैसे करोगे? फिर मंत्र वाला उच्चारण करने वाला चाहिए, अब वो लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी कर देगा तब। मंत्र के अंदर हम लोग के अंदर आता है एक सूक्तम के अंदर में कि लक्ष्मी आओ अलक्ष्मी चली जाओ, ऐसा है। अच्छा, अलक्ष्मी के अंदर और नहीं है, वहां एक अवग्रह है, इसे उसको ऐसे लिख देते हैं। तो कोई अगर अनाड़ी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा?
लक्ष्मी जाओ,
लक्ष्मी जाओ। मंत्र उच्चारण ठीक होना चाहिए, मंत्र का उदात अनुदात होता है, ऊपर नीचे स्वरित होता है, वैसा करना चाहिए। बहुत सारे नियम है उसके लिए मुश्किल हो जाती है करना। तो भगवान ने हमारे लिए सहज कर दिया, हमारी पूजा करो किससे करो? कर्मों से करो। कर्म कैसे करें? अपनी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए करो। भगवान यही चाहते हैं हमसे, कलयुग में ये करना है हमको, है भगवान के लिए करते जाओ। तो इससे क्या होगा? आपके मन के अंदर भगवान आ जाएंगे। अभी भगवान नहीं है, भगवान की खुशी के लिए आप अपने आप को बार बार प्रश्न करते रहो, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे? देखो भगवान आ गए, पीछे में बैठिए, भगवान ये पसंद है, भगवान को ये कर ऐसा करे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।